आज है 14 मई दिन शनिवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। बिहार में पत्रकार की हत्या के बाद बीजेपी ने उठाया कानून व्यवस्था का सवाल।
दर्शकों के मन में एक ही डर लगा रहता कि कहीं बिहार फिर पुराने दिनों की ओर लौट कर न चला जाए। 15 साल जो लालू का जंगल राज था, बड़ी मुश्किल से बिहार को निकाल कर हम लोग एक रास्ते पर लाए थे।
झारखंड में स्थानीयता के मुद्दे पर विपक्षी दल ने बुलाया बंद। संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक प्रमुख बाबा हरदेव सिंह की कार दुर्घटना में मौत। होगी अजहर फिल्म की समीक्षा। और रियो ओलंपिक में कौन जाएगा, सुशील कुमार या फिर नरसिंह यादव?
आज तक जो भी रेसलर क्वालिफाई किया वही ओलंपिक गया है। इस बार भी मैं ही जाऊंगा।
मैं ये नहीं कहता कि सुशील ने दो मेडल जीते तो सुशील को भेज दो ना, जो भी मेरे में से और नरसिंह में से तगड़ा है वो देश के लिए जाए और देश के लिए मेडल जीते।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। बिहार के सिवान में हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ राजदीप रंजन की कल देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई थी। सिवान के पुलिस अध्यक्ष सौरभ कुमार साहन के अनुसार हमलावरों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जनता से वादा किया है कि पिछले सप्ताह जंगल में लगी भयानक आग से तबाह हुए फोर्ट मैकमरे के कुछ इलाकों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ट्रूडो ने आग से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने आग से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई घोषणाएं की। इस आपदा के कारण लगभग 90,000 निवासियों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा था। ट्रूडो ने अपने आलोचकों की इस बात का भी जवाब दिया है कि उन्हें जल्दी इस इलाके का दौरा करना चाहिए था और कहा कि यदि वे ऐसा करते तो उनकी उपस्थिति से आग बुझाने की कोशिशों में दखल पड़ सकता था। स्पेन के सेसना में टायर के एक बड़े ढेर में आग लगने के कारण वहां रहने वाले 9,000 लोगों को घरों से दूर जाने के आदेश दिए गए हैं। आग के कारण इलाके में धुएं के काले जहरीले बादल छा गए हैं। देश की राजधानी मैड्रिड के दक्षिण में स्थित इस इलाके के लोगों को बताया गया है कि इस धुएं के कारण उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सेसना के एक नागरिक ने बताया,
हमारा
छोटा बेटा हमें लेने आया है। हम लोग मैड्रिड जा रहे हैं। हम बूढ़े हैं और चूंकि हम जगह छोड़कर जा रहे हैं, हम अपनी दवाइयां भी लेकर जा रहे हैं। हम भी ठीक रहेंगे और वहां साथ ही हमारे सातों बच्चों भी राहत की सांस लेंगे। ये थे स्पेन के सेसना में रहने वाले एक नागरिक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विश्व फुटबॉल को संचालित करने वाली समिति फीफा के इतिहास में पहली बार महासचिव के रूप में एक महिला को चुना गया है। इससे पहले फीफा में पुरुष प्रधान समिति ही देखी जाती रही है। सेनेगल की फातमा सांबा चू सेम्यूरा एक कैरियर डिप्लोमेट हैं जो वर्तमान में नाइजीरिया में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय संयोजक हैं। सेम्यूरा चेरुम्बाक के स्थान पर रहेंगी, जिन्हें पिछले साल भ्रष्टाचार के मामले से उठे विवादों के बाद जनवरी में बर्खास्त कर दिया गया था। सेम्यूरा की नियुक्ति की घोषणा करते हुए फीफा के अध्यक्ष जानी इन्फेंटिनो ने कहा कि वो संस्था के लिए एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह होंगी, जो बाहर से हैं और संस्था में नई भी हैं। ब्राज़ील के निलंबित राष्ट्रपति जिल्मा रुसेफ ने पूर्व उपराष्ट्रपति मिशेल टेमेयर के नेतृत्व में बनी नई अंतरिम सरकार की आलोचना की है और कहा है कि इसमें पूरी तरह से सफ़ेद पुरुष नेता हैं। रुसेफ ने कहा कि नई सरकार दुनिया की सबसे विविध जातियों वाले देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिहार और झारखंड से, जहां पिछले 24 घंटों में दो पत्रकारों की हत्या कर दी गई है। शुक्रवार शाम ये खबर आई कि बिहार के सिवान जिले में एक वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन को रेलवे स्टेशन के नज़दीक दो गोलियां मारी गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले झारखंड के चतरा में भी गुरुवार देर रात पत्रकार इंद्रदेव यादव की हत्या कर दी गई थी। बिहार में पत्रकार की हत्या के बाद बीजेपी और सत्ताधारी महागठबंधन के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है।
गया का मामला शांत भी नहीं हुआ था, अभी तक मनोरमा देवी गिरफ्तार भी नहीं हो पाई है और एक बड़ी घटना घट गई है। हम सब लोग चिंतित हैं और सब लोगों के मन में एक ही डर लगा रहता कि कहीं बिहार फिर पुराने दिनों की ओर लौट कर न चला जाए। 15 साल जो लालू का जंगल राज था, बड़ी मुश्किल से बिहार को निकाल कर हम लोग एक रास्ते पर लाए थे, लेकिन लग रहा कि बिहार धीरे धीरे फिर पुराने दिनों की ओर लौट कर जा रहा।
ये थे बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी। राज्य के गया जिले में करीब 6 दिन पहले गाड़ी ओवरटेक करने पर एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप सत्ताधारी जनता दल यू की पार्षद मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव पर लगा है, जो इस समय हिरासत में है। तो सत्ताधारी जनता दल यू के प्रवक्ता अजय आलोक ने अपनी पार्टी का बचाव किया।
देखिए, आपका जो मर्जी है, आप इसको तरह तरह के राज बता रहे हैं, पिछले 5 दिनों से बताते रहिए, लेकिन हम बताते हैं कि सरकार इन घटनाओं पर बहुत गंभीर है। जो भी अपराधी होंगे, जो भी दोषी होंगे, वो पकड़े जाएंगे। और इस तरह से बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं पर विपक्ष और मीडिया जिस तरह से शोर मचा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा है, एक परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है।
ये थे सत्ताधारी जनता दल यू के प्रवक्ता अजय आलोक। तो पत्रकार की हत्या के बाद बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है, वहीं जेडीयू अपना बचाव करती दिख रही है। इस मामले पर ताजा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं पटना मनीष शांडले के पास। मनीष, ये बताइए कि इस मामले में अब क्या अपडेट है आपके पास?
सुशीला, अभी मैं कुछ देर पहले सिवान में वहाँ के जो पुलिस अधिकारी है उन लोगों से बात की, पुलिस जो जिला मुख्यालय है वहाँ बात की, तो जहाँ तक जांच की बात है तो शाम के बाद अभी जो लगभग 12 घंटे के आसपास का वक्त बीता है उसमें जांच बहुत ज्यादा आगे बढ़ी नहीं है। मुझे बताया गया कि जो सोनभद्र मंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक हैं, आईजी हैं, वो वहाँ कैंप कर रहे हैं। देर रात पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई और जो FIR है वो दर्ज करने की प्रक्रिया भी चल रही है।
जी,
तो जांच के मोर्चे पे तो अभी ये
जी जांच के मोर्चे पर यही खबर है। ये बताइए कि सुशील कुमार मोदी जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं कानून व्यवस्था का, और हाल ही में गया जिले में जो घटना हुई उसके बाद अब लोगों का क्या कहना है?
गया की घटना हो या थोड़ा अगर पीछे चले तो बीते साल दिसंबर में जो दरभंगा में इंजीनियर्स की हत्या हुई थी, उसके बाद रह रहकर ऐसी घटनाएं, बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद एक तरह की चर्चा लोगों के बीच ये, और जिस ढंग से उसे सामने लाया जाता है कि अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के उसमें विधायक या नेता शामिल हो या फिर बाकी घटनाएं हों जैसे कि कल की घटना है। दूसरी ओर सरकार अपने जो उसके जो आंकड़े हैं अपराध के, उसके आधार पे कहती है, अभी जब से शराबबंदी लागू उसने लगभग 1.25 महीने गुजरे हैं तो उनका कहना है कि अपराध घटे हैं, तो लेकिन फिर भी जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो चर्चा में तो रहती है, लोग चिंतित दिखाई देते हैं, और सरकार के अपने दावे हैं आंकड़ों के अनुसार कि अपराध घटे हैं, और सरकार यह भी दावा करती है कि घटना कोई भी रही हो, बड़ी छोटी, उसने हर मामले में कार्रवाई की है।
तो सरकार का कहना है कि वो कार्रवाई कर रही है। ये थे पटना से मनीष शांडले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड में स्थानीयता के सवाल पर आंदोलन का दौर जारी है। आज सूबे में प्रमुख विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड बंद बुलाया है। बंद का कोई राजनीतिक दलों और आदिवासी मूलवासी संगठनों ने समर्थन किया है। बंद को देखते हुए कई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आगजनी तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जिलों को सतर्क करते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को समन भेजकर तोड़फोड़ नहीं करने का बॉन्ड भरवाया गया है। पूरी जानकारी के साथ रांची से नीरज सिन्हा।
झारखंड में बीजेपी सरकार द्वारा इस नीति को मंजूर किए जाने के बाद इसके फार्मूले को लेकर विरोध की आवाजें तेज होती जा रही हैं। तमाम हिदायत और चौकसी के बाद भी बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। 5 महीने के दौरान 5वीं दफा है जब झारखंड को बंद का सामना करना पड़ा है। नीति में यह प्रावधान किया गया है कि जो 30 सालों से झारखंड में रहता आया है वह झारखंडी माना जाएगा, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई आदिवासी मूलवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। इन दलों और संगठनों का जोर है कि स्थानीय उन्हें माना जाए और सरकारी नौकरियां उन्हें दी जाए जिनके पास अपने या पूर्वजों के नाम जमीन का रिकॉर्ड है। गौरतलब है कि झारखंड में जमीन का अंतिम सर्वे 1932 में हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दशरथ गागराई कहते हैं,
क्योंकि झारखंड लड़के लिया गया है इसलिए झारखंड के लिए स्थानीय नीति जो परिभाषित किया गया है वो बिल्कुल झारखंड का आदिवासी और मूलवासी का ही हित में हुआ है, इसलिए इस लड़ाई को बिल्कुल हम लोग मंजिल तक पहुंचाएंगे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस रुख पर बीजेपी सरकार के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा का कहना है,
जेएमएम का जो विपक्ष का है वो अपना राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं और इसलिए उस विषय में ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा।
इस बीच रांची जोन के डीआईजी आरके धान ने बताया है कि राजधानी समेत अन्य जिलों में सुरक्षा को लेकर कार्रवाई शुरू है।
प्रिवेंटिव पुलिस आज ही से हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे और सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का आगजनी तोड़फोड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। इस संबंध में हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के अपने प्रचार प्रसार माध्यम से है, संपत्ति विनाश सरकारी जो अभी नियम कानून जो बने हैं, संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अधिनियम, इसका हम लोग सख्ती से इस बंदी के दौरान पालन।
सुरक्षा को लेकर एहतियातन जगह जगह कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने तथा बांड भरवाने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है,
तो ये सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो दमनात्मक रवैया है, इससे स्थानीय नीति के विरोध में जो कार्यक्रम पार्टी के द्वारा तय किए गए हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चाहे वो जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता को वो बॉन्ड भरवा ले, उनको अरेस्ट कर ले, हाउस अरेस्ट कर ले, लेकिन इस आंदोलन को दबा नहीं सकते हैं।
बहरहाल सालों तक स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन और अब फार्मूले को लेकर टकराव, इस मुद्दे पर सर्वमान्य हल कब तक निकलता है इसका इंतजार रहेगा। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बेनी प्रसाद वर्मा हालांकि समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, लेकिन एक समय पार्टी नेताओं से उनके संबंध इतने कड़वे हो गए थे कि वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस ने उन्हें बाराबंकी से लोकसभा का टिकट दिया और चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री भी बनाया। सपा के नेताओं के साथ उनकी इतनी तीखी बयानबाजी हुई कि उन्होंने कई बार कहा कि वो इस पार्टी में कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने घर वापसी कर ली। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने बेनी प्रसाद वर्मा से बात की और सबसे पहले यही सवाल पूछा,
क्या करते हैं,
क्यों, ऐसा क्या लग रहा था, इतने दिन कांग्रेस में आप रहे और समाजवादी पार्टी से इतनी बीच में आपकी कटुता भी हो गई थी, फिर कैसे आना हो गया इस पार्टी में?
देखिए, हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं और वो हमारे वाराणसी के मतभेद हो गए थे कुछ, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। नहीं, समाजवादी पार्टी को बनाने वालों में हम भी थे। अब इधर जैसे लोकसभा चुनाव हुए, इसे कोई दो राय नहीं कि हमको सोनिया जी ने, राहुल जी ने बहुत इज्जत दी, हमने आज कहा भी कि हम उनके इसके लिए सामंत रहे जिंदगी भर, लेकिन राजनीति में बेकार नहीं बैठा जा सकता है। यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, हम लोग 20 साल की उम्र से एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हमेशा, अब हम बसपा में जाने सकते हैं, भाजपा में जाने सकते हैं। मुलायम सिंह से बातचीत रोज होती थी, वो चाहते भी थे कि हम वापस आ जाएं। आज उन्होंने अचानक कहा कि चलो आज ज्वाइन करो, हम मना नहीं कर पाए।
आप कह रहे हैं कि राजनीति में बहुत दिन तक खाली रहा नहीं जा सकता है, तो कांग्रेस में आप थे, आप बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे, तो आपकी भी अपनी जिम्मेदारी थी कि कुछ कांग्रेस को आगे बढ़ाते, तो क्या आपको लग रहा था कि उस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है?
ऐसे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम आज भी कांग्रेस में नहीं है अब। लेकिन सोनिया जी की, राहुल जी की बहुत इज्जत करते, लेकिन अभी हम कांग्रेस में आए थे तो कांग्रेस को फायदा ही पहुंचा था। उस वक्त कांग्रेस की एक होप बनी थी कि कांग्रेस मेन स्ट्रीम में आ जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे जादूगर हैं कि वो कसम खाए हैं कि वो कांग्रेस को नहीं बोलने देंगे। वो ना इतने अच्छे कंसेप्ट की पार्टी, इतने अच्छे इतिहास की पार्टी, उत्तर प्रदेश से जहाँ से एक तरह से कांग्रेस पैदा हुई, आजादी की लड़ाई में जिस प्रदेश का सबसे बड़ा रोल रहा, उस प्रदेश से कांग्रेस ऐसी दशा हो जाए। कांग्रेस न किसी जात की पार्टी, न किसी धर्म की पार्टी है, ऐसी पार्टी किसी दुनिया में या देश में बनना मुश्किल है, लेकिन है दुर्भाग्य है।
ये बताएं कि जो बीच में इस दौरान जब आप कांग्रेस पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ आपके बड़े चर्चित वाक युद्ध हुए, बहुत से आरोप आपने भी लगाए और उन पार्टी के नेताओं ने भी लगाए, अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे आप?
हम लोग जवानी के दिनों के साथ हैं, तो पॉलिटिक्स में न कोई परमानेंट दुश्मन होता है, न कोई परमानेंट दोस्त होता है।
लेकिन शिवपाल जी वगैरह ने बड़े आपके व्यक्तिगत स्तर पे आरोप लगाए थे, और चूंकि शिवपाल जी को तो आप इस पार्टी में इग्नोर कर नहीं सकते हैं, तो क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे लोगों के बीच में बैठने में, ऐसे लोगों के साथ?
अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पारिवारिक संबंध थे ना हमारे, झगड़ा परिवार में होता है, झगड़ा होता है, सुलह होती है, सुलह हो जाता है।
तो समाजवादी पार्टी में अब आपकी क्या भूमिका होगी या पार्टी क्या उम्मीद कर रही है आपसे?
अरे भाई, हम दो चार जिलों में अपने बलबूते पे इसको मजबूत कर देंगे, अभी उम्मीद का बात है, अभी चार छह घंटे की बात।
एक आखिरी सवाल सर, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी आपको भेज रही है या नहीं?
हमने कोई मांग नहीं की, उन्होंने कोई ऑफर किया।
तो बेनी प्रसाद ने फिर थामी साइकिल, उनसे बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत सुशीला सिंह के साथ। संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक प्रमुख बाबा हरदेव सिंह की कनाडा के मॉरिटोरियल में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। वो 62 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया है। मौत के कारणों और निरंकारी समुदाय के भविष्य पर विनीत खरे ने कनाडा के वैंकूवर शहर फोन कर स्थानीय पत्रकार सुखमिंदर सिंह चीमा से बात की।
अभी तक तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे है कि मॉन्ट्रियल के पास उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और वो जैसे कि एक एक्सीडेंट में उनकी गाड़ी कैडिलक गाड़ी थी जो टूट गई है, तो पिछली सीट पर थे, तो पिछली सीट पर जो लोग भी बैठे थे सभी बुरी तरह से फटे हुए हैं। उनके सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, सीट बेल्ट बंधी न होने कारण उनकी मौत हुई है।
आप कह रहे हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है?
बिल्कुल, उनका जो एक्सीडेंट है वो हाईवे 30 पर हुआ है और उनके ट्रक से एक्सीडेंट होने के कारण उनकी जो मौत हुई है। उनकी काली रंग की ब्लैक गाड़ी थी जिसमें वो सफर कर रहे थे और कुछ दिन पहले, शायद एक आधा दिन पहले वो इंडिया से यहाँ आए थे।
सुखमिंदर सिंह जी, ये जो निरंकारी सेक्ट है कुछ उसके बारे में बताइए। और वो पैदा दिल्ली में हुए थे जहाँ तक मुझे जानकारी है, और जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी चरमपंथियों ने, मिलिटेंट्स ने, कुछ उनके बारे में बताइए, शख्सियत और जो निरंकारी जो सेक्ट है उसके बारे में।
इसके बारे में यही है कि सिखों में से पैदा हुआ एक कल्ट है या सेक्ट है जिसके बारे में यह है कि कई तरह की कंट्रोवर्सी है। जो चरमपंथी सिख है उनका मानना है कि ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती करते हैं, बेइज्जत भी करते हैं, हमारे गुरु साहिबान की जो गुरबानी है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इसी बात से झगड़ा हुआ था और 1978 में अमृतसर में एक निरंकारी समागम में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। वहाँ दोनों पक्षों के बीच लड़ाई होने के कारण 18 सिख मारे गए थे और उसके बाद निरंकारी और सिखों के दरमियान दुश्मनी चली आ रही है। और 1980 में बाबा हरदेव सिंह के पिता उनकी हत्या के बाद ये दुश्मनी और भी गहरी हो गई। बाबा हरदेव सिंह ने कंट्रोवर्सी को कम करने के लिए काफी कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक सिखों ने निरंकारियों को मानता नहीं दी, ना ही उनको माफ किया है।
और उनके नहीं रहने से ये जो समुदाय है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा?
देखो, कोई भी संप्रदाय है किसी के चले जाने के बाद रुकती तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ समीकरण जरूर बदलेंगे। जो नए लोग इनकी जगह आएंगे उन पर निर्भर करता है कि वो कैसे सिख भाईचारे के साथ, सिख समुदाय के साथ कैसे रहना पसंद करते हैं। लेकिन इतना पक्का है कि कनाडा में वो जब भी आते थे वो पूरे सीक्रेट विजिट पर आते थे, ओपनली कोई भी उनके बारे में किसी को पता नहीं होता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जहाँ उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। 1980 में जब इनके पिता की हत्या की गई थी उसके बाद ये उनकी जगह इनको नियुक्त किया गया था, ये उसकी जगह इन्होंने ली थी।
ये थे वैंकूवर शहर से स्थानीय पत्रकार सुखमिंदर सिंह चीमा। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। मानसी समाचार पत्रों के साथ स्टूडियो आ चुकी है। मानसी।
सुशीला जी, हिंदी और अंग्रेजी के लगभग सभी अखबारों ने साध्वी प्रज्ञा को मालेगांव धमाके मामले में मिले क्लीन चिट को ही अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। आपको बता दूं कि एएनआई की विशेष अदालत ने पूरक आरोप पत्र दाखिल कर साध्वी के खिलाफ मकोका समेत सभी आरोप वापस ले लिए हैं। बिहार के सीवान में हिंदुस्तान के पत्रकार की हत्या को भी कुछ अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि एनआईए ने महाराष्ट्र चरमपंथी निरोधी दस्ते पर लेफ्टिनेंट कॉलोनल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को फंसाने के लिए मालेगांव हादसे की जगह पर आरडीएक्स के अंश प्लांट करने का आरोप लगाया है। यही खबर हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर भी है। पन्ने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जगह दी गई है जिसमें कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार असीम नहीं है, मामला मानहानि से जुड़े कानून के दंडात्मक प्रावधानों की वैधता की पुष्टि करने से जुड़ा है। कोलकाता से छपने वाले अंग्रेजी के अखबार दी स्टेटमैन ने खबर दी है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले 16 दिन से चल रही बेमियादी भूख हड़ताल कर रहे जेएनयू के छात्रों ने कल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू प्रशासन की ओर से जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दूसरे छात्रों के खिलाफ जारी किए गए अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश पर रोक लगा दी थी। पायोनियर की एक खबर भी आपको बता दूं, पानी लेकर सूखाग्रस्त महाराष्ट्र के लातूर इलाके में पहुंची पानी की ट्रेन यानी जलदूत के संबंध में भेजा गया 4 करोड़ का बिल भारतीय रेलवे ने वापस ले लिया है। रेलवे का कहना है कि लोगों के पास पानी पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है, न कि खर्चों का निपटारा करना। अब जरा हिंदी के अखबारों की बात कर लें। नई दुनिया की बात करें तो पहले पन्ने पर जगह दी गई है हाल में हरियाणा में हुए जाट आरक्षण आंदोलन की। बताया गया है कि हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा का जो तांडव हुआ उसमें आम जनता ही नहीं जज तक घबरा गए थे। रोहतक जिले के 8 जजों ने प्रकाश कमेटी के सामने पेश होकर अपने साथ हुई दहशत भरी घटना की जानकारी दी।
समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मानसी आपका।
बीबीसी इंडिया बोल। रियो ओलंपिक में जबकि सिर्फ 3 महीने शेष हैं, इस बात पर विवाद है कि कुश्ती के 74 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करे। नरसिंह यादव, जिन्होंने विश्व प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, या सुशील कुमार, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 पदक जीते हैं। क्या रियो जाने के लिए दोनों के बीच मुकाबला होना चाहिए? यही है विषय शनिवार 14 मई के इंडिया बोल का। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शाम 7:30 से 8 बजे के बीच इन नंबरों पर फोन करें, 1811-7000 और 1811-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
और जैसा कि आपने इंडिया बोल के विषय में सुना, रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों में 74 किलो भार वर्ग में 2 बार ओलंपिक में पदक जीत चुके सुशील कुमार कुश्ती के मुकाबले में उतरे या फिर नरसिंह यादव, आखिरकार कहां है उलझन? एक रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त।
रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी बीच रियो का टिकट हासिल करने वाले सभी क्वालिफायर मुकाबले भी समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भारतीय कुश्ती संघ ये तय नहीं कर पाया है कि 74 किलो भार वर्ग में पिछले साल लास वेगास में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के साथ ही रियो का टिकट हासिल करने वाले नरसिंह पंचम यादव रियो जाएंगे या फिर बीजिंग ओलंपिक के कांस्य और लंदन ओलंपिक के रजत पदक विजेता सुशील कुमार। ऐसे विकट परिस्थिति को लेकर खुद नरसिंह यादव ने बीबीसी से खास बातचीत में कहा,
वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीत के मैंने क्वालिफाई किया है और आप देखेंगे कि आज तक जो भी रेसलर क्वालिफाई किया है वही ओलंपिक गया है, तो इस बार भी मैं ही जाऊंगा। मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी डिसीजन लेगी अच्छा डिसीजन लेगी।
दूसरी तरफ सुशील कुमार कहते हैं,
मैं ये नहीं कहता कि सुशील ने 2 मेडल जीते तो सुशील को भेज दो ना, जो भी मेरे में से और नरसिंह में से तगड़ा है वो देश के लिए जाए और देश के लिए मेडल जीते।
नरसिंह ऐसा नहीं मानते कि सुशील कुमार में कोई कमी है, लेकिन अपने वजन में वो खुद को भी कम नहीं आंकते।
24 kg में शुरू से खेलता आया हूँ और ओवरऑल मेरी परफॉर्मेंस 24 kg में सबसे अच्छी है, और जो सुशील कुमार जी हैं वो अच्छे रेसलर हैं बट वो 66 kg में उन्होंने मेडल जीता है, तो 74 kg का बात हो रही है तो 24 kg में मैं बेस्ट हूँ।
अब सुशील कुमार कह रहे हैं कि अगर उन्हें रियो भेजना ही नहीं था तो क्यों उन पर इतना खर्च किया गया?
हमारी सरकार ने, हमारी फेडरेशन ने जो मेरे पे खर्चा किया है 2 साल से, वो इसीलिए किया है कि हाँ मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। अदरवाइज मेरे को पहले ही मना कर देते ये चीज, ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। हमारी जो और अधिकारी हैं फेडरेशन के, तो वो लोग बैठ के मीटिंग करेंगे उस चीज पे और उस पे सही निर्णय लेंगे।
अब नरसिंह ने भी जैसे ठान ही लिया कि वो भी पीछे नहीं हटेंगे।
जब हम वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड मेडलिस्ट और ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर से उनको लड़के उनको हराया है तो हम किसी से नहीं डरते। बाकी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी निर्णय लेगी हमें मंजूर है, वो परफॉर्मेंस देख के और कुश्ती के हित में अपने देश के हित में ही डिसीजन लेगी। जो भी डिसीजन लेती है मुझे रियो भेजने का, तो मैं उसके लिए संतुष्ट हूँ।
अपने दाव से कुश्ती के अखाड़ों में चितपट करने वाले सुशील कुमार और नरसिंह यादव को इंतजार है अब भारतीय कुश्ती संघ के दाव का जो उन्हें रियो भेजेगा, लेकिन संघ के फैसले का ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कहना मुश्किल है।
ये थी आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट। और अब निर्देशक टोनी डिसूजा की फिल्म अजहर की बात, फिल्म समीक्षा कर रही है इंदु पांडे।
मैं किसी एम के शर्मा को नहीं जानता हूँ।
150 players हैं, 11 teams हैं, फिर तेरा ही नाम क्यों?
जब अजहर को लगा कि उसके खेलने के दिन कम है तो उसने पैसे लेकर खेलना शुरू कर दिया।
क्रिकेट और क्रिकेट के साथ बॉलीवुड और इन दोनों के साथ होती है कंट्रोवर्सी, और जब ये तीनों चीजें मिल जाएं तो उनके ऊपर बन जाती है फिल्म, और ऐसी ही एक फिल्म है अजहर। अर्णव बनर्जी वो फिल्म देख के आए हैं और बता रहे हैं कैसी लगी उनको।
आपने सही कहा कि कंट्रोवर्सी बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों के साथ जुड़ी रहती है। अजहर फिल्म जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है अजहर की लाइफ पर है और उसके साथ जो कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, यानी आधी फिल्म जो है कोर्ट पर आधारित है। जो कोर्ट सीन्स हैं वो ये निर्धारित करेंगे कि अजहर गिल्टी थे या नहीं थे।
बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
इमरान हाशमी, तो वो कितना कैरेक्टर के अंदर घुस पाए हैं?
मुझे लगता है कि बायोपिक्स हम लोग, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग या तो रिसर्च कमजोर होती है हमारी, या हम किसी को हमेशा हीरो ही दिखाना चाहते हैं। आदमी के अंदर खामियां भी होती है, खूबियां भी होती है, लेकिन अगर आप सिर्फ खूबियां दिखाना चाहें तो वो बायोपिक नहीं बन सकती अच्छी। अजहरुद्दीन के रोल में इमरान हाशमी बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि उनका जो एक डायलॉग डिलीवरी का जो अंदाज है वो वैसा ही जैसे कि विक्रम भट्ट की फिल्मों में रहता है, एक हस्की सी वॉइस में। कुछ हद तक शायद उन्होंने अजहरुद्दीन को कॉपी करने की कोशिश करी है, क्योंकि अजहरुद्दीन बहुत आर्टिकुलेट नहीं है और बहुत कम बोलते हैं और मुंह नीचे करके रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अजहरुद्दीन को हीरो दिखाना था। आप उससे सहमत हो या नहीं हो वो अलग बात है, यानी वो मैच फिक्सिंग में शामिल थे या नहीं थे ये तो दूसरी बात है। जो फिल्म का टोनी डिसूजा दिखाना चाहते हैं वो ये है, अजहरुद्दीन गिल्टी नहीं थे। उसके साथ साथ जुड़े हुए जितने भी कंट्रोवर्सीज थी मैच फिक्सिंग की, या उनकी जो दूसरी बीवी संगीता बिजलानी को लेकर थी, वो सारी बातें अगर वो एक बहुत कन्विंसिंग ढंग से दिखाते तो दर्शक सोच के जाते हाँ हमने कुछ नया पाया। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे लगता है कि अजहरुद्दीन की लाइफ पर कुछ नई रोशनी डालेगा।
तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम।
प्राची देसाई वापस आई हैं फिल्मों में।
प्राची देसाई अच्छी लगती हैं, वो अजहरुद्दीन की पहली बीवी बनी है और उनका ऐसा ही रोल हमने दो तीन फिल्मों में पहले भी देखा है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में थी वो, बहुत ज्यादा एक हाउसवाइफ का रोल जो बच्चे देखती हैं, घर संभालती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग कैरेक्टर नहीं है वो, लेकिन घरेलू है। प्राची देसाई का इतना कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। दूसरी ओर नरगिस फाखरी बनी है संगीता बिजलानी। संगीता बिजलानी को लोग ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो एक्ट्रेस थी और उनका नाम जो अजहरुद्दीन के साथ बहुत साल जुड़ा रहा, वो शादी भी की उन्होंने, लेकिन यहाँ पर अगेन नरगिस फाखरी को बहुत छोटा दिखाया है और मुझे लगता है कई सीन्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि नरगिस फाखरी खुद उनको पसंद नहीं करेंगी। अजहरुद्दीन को हीरो दिखाने के लिए कई सारे कैरेक्टर्स हैं, रवि शास्त्री हैं, मनोज प्रभाकर, तो कॉन्ट्रोवर्सी तो हरेक के साथ थी, तो उन लोगों को जो है काफी हद तक नेगेटिव दिखाया है। मुझे लगता है कि सच्ची होनी चाहिए बायोपिक, जो भी बने सच्ची हो, लेकिन जो भी कुछ दिखाएं उसमें कन्विक्शन हो, या कन्विक्शन नजर नहीं आता है।
तो फिर अजहर को कितने नंबर देंगे अर्णव?
मैं अजहर को 5 में से 2 दूंगा।
थैंक यू वेरी मच अर्णव। तो अजहर फिल्म की समीक्षा के बाद और अब समय है मुख्य समाचारों का।
बीबीसी समाचार। अमरीकी दवा कंपनी फाइजर ने अपने उत्पादों का इस्तेमाल घातक इंजेक्शन में ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए उन पर नियंत्रण लगाया है। बयान जारी कर कंपनी ने कहा है कि उसके उत्पाद मरीजों की जान बचाने के लिए हैं और किसी भी प्रकार की मौत की सजा देने के लिए इसके इस्तेमाल पर उन्हें कड़ी आपत्ति है। बिहार के सिवान में हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की कल देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जनता से वादा किया है कि पिछले सप्ताह जंगल में लगी भयानक आग से तबाह हुए फोर्ट मैकमेरे के कुछ इलाकों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। स्पेन के सेस्ना में टायर के बड़े ढेर में आग लगने के कारण वहां रहने वाले 9,000 लोगों को घरों से दूर जाने के आदेश दिए गए हैं। आग के कारण इलाके में धुएं के काले जहरीले बादल छा गए हैं। विश्व फुटबॉल को संचालित करने वाली समिति फीफा के इतिहास में पहली बार महासचिव के रूप में एक महिला को चुना गया है। इससे पहले फीफा में पुरुष प्रधान समिति ही देखी जाती रही है। सेनेगल की फातिमा सांबा जूफ सेम्यूरा एक करियर डिप्लोमेट हैं जो वर्तमान में नाइजीरिया में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय संयोजक हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूरोप में हाल में सक्रिय किया गया नाटो का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नए हथियारों की दौड़ की दिशा में एक कदम है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी मानसी दास। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।